ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जीव आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु भी है, क्योंकि आत्मा में और का जो सद्भाव नहीं भासता, आत्मा में और का सद्भाव नहीं, आत्मा में आत्मा का ही भाव है, द्वैत नहीं। जो दृश्य पदार्थ और अनात्म धर्म विषय से खींचकर चित्त की ओर अपने रूप में स्थित करता है, वह तो अपना मित्र है, और जो अनात्म धर्म में पदार्थ की ओर चित्त लगाता है, वह अपना शत्रु है। वास्तव में जो कुछ दृश्य प्रपंच है, वह भी आत्मस्वरूप है, आत्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं। जैसे समुद्र में जल से भिन्न कुछ वस्तु नहीं, सब जल ही जल है, वैसे ही आत्मा से भिन्न जगत कोई वस्तु नहीं, सब में अनुस्यूत अर्थात व्याप्त एक आत्मसत्ता ही स्थित है। जैसे अनेक घटों में और अनेक घटों के जल में एक ही सूर्य का प्रकाश प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही अनेक देहों में एक ही आत्मा व्याप रहा है, वह न अस्त होता है और न उदय होता है, सदा एक रस अविनाशी पुरुष ज्यों का त्यों स्थित है। उसमें अहम भावना से संसार भासित होता है, जैसे सीपे में चांदी की बुद्धि होती है, वैसे ही आत्मा में अहम बुद्धि संसार का कारण है। जीव इसी बुद्धि से सब दुखों का भागी होता है। जैसे वर्षा काल में सब नदियां समुद्र में प्रवेश करती है, वैसे ही अनात्म के अभिमान से सब आपदाएं प्राप्त होती हैं। वास्तव में चिन्मात्र ब्रह्म और जीव में रंचक भी भेद नहीं है, दोनों एक रूप ही हैं। ऐसी बुद्धि ही बंधन से मुक्ति का कारण है। आत्मा सब में अनुस्यूत अर्थात व्याप्त है, जैसे सूर्य का प्रकाश सब स्थानों में होता है, परंतु जहाँ शुद्ध जल है वह स्पष्ट दिखता है, वैसे ही आत्मा सब जगह पूर्ण रूप से व्याप्त है, परंतु शुद्ध बुद्धि में ही भासित होता है। जैसे तरंग और बुलबुले में जल ही व्याप रहा है, वैसे ही अविनाशी आत्मा सर्वत्र व्यापा है, पर जैसे सुवर्ण में भूषण नहीं, वैसे ही आत्मा में जगत का अभाव है। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 67। भानु बोले, हे वशिष्ठ जी, सब चेतन स्वरूप है, जो चेतन स्वरूप न हो तो क्यों भासे? चेतनता से उपलब्ध रूप होते हैं, जड़ और चेतन का विभाग अवाच्य ब्रह्म में नहीं पाया जाता, प्रमाद दोष से वास्तव में नहीं। जैसे स्वप्न में दो प्रकार के जड़ और चेतन भूत भासते हैं, उनका प्रमाद होता है, तब उस चेतन भूत प्राणी को जड़ चेतन विभाग भासता है और स्वरूप दर्शी को सब एक स्वरूप है। हे मुनीश्वर, ब्रह्मा में जो चैतन्यता हुई वही मन हुआ, उस मन में जो चेतन भाग है वही ब्रह्मा है और जड़ भाग अबोध है। जब अबोध भाव होता है तब दृश्य भ्रम देखता है, और जब चेतन भाव में स्थित हो जाता है तब शुद्ध रूप होता है। हे मुनीश्वर, चेतन मात्र में अहंकार का उत्थान दृश्य है और परमार्थ में कुछ भेद नहीं। जैसे तरंग जल से भिन्न नहीं, तैसे ही अहम चेतना मात्र से भिन्न नहीं होता। सबकी प्रतीति ब्रह्म ही में होती है, वह परम पद है और सब दुखों से रहित है। वही शुद्ध चित्त जीव जब चैतन्य भाव को चेतता है तब जड़ भाव को देखता है। जैसे स्वप्न में कोई अपना मरना देखता है, तैसे वह चित्त जड़ भाव को देखता है। आत्मा सर्वशक्तिमान है, करता है तो भी कुछ नहीं करता, और उसके समान और कोई नहीं। हे मुनीश्वर, यह जगत कुछ वास्तव में उपजा नहीं, चित्त के फुरने से भासता है। जब चित्त की स्फूर्ति होती है तब जगत जाल भासता है, और जब चेतन आत्मा में स्थित होता है तब मन का जड़ भाव नहीं रहता। जैसे पारसमणि के मिलाप से तांबा स्वर्ण हो जाता है और फिर उसका तांबा भाव नहीं रहता, तैसे ही जब मन आत्मा में स्थित होता है तब उसकी जड़ता दृश्य भाव नहीं रहती। जैसे स्वर्ण को शोधन करने से उसका मैल जल जाता है और शुद्ध ही शेष रहता है, तैसे ही चित्त जब आत्मा में स्थित होता है तब उसका जड़ भाव जल जाता है और शुद्ध चेतन मात्र शेष रहता है। वास्तव में पूछो तो शुद्ध भी द्वैत में होता है, आत्मा में द्वैत नहीं, इससे शुद्ध कैसे हो? जैसे आकाश में फूल और वृक्ष वास्तव में कुछ नहीं होते, तैसे ही शोधन भी वास्तव में कुछ नहीं है। हे मुनीश्वर, जब तक आत्मा का ज्ञान है तब तक नाना प्रकार का जगत भासता है, और जब आत्मा का बोध होता है तब जगत भ्रम नष्ट हो जाता है। यह जगत भ्रम चित्त में है, जैसा निश्चय चित्त में होता है तैसा ही हो भासता है। इसी पर अहिल्या और इंद्र का दृष्टांत कहा है। इसे जैसी भावना दृढ़ होती है तैसा ही हो भासता है। हे वशिष्ठ जी, जिसको यही भावना दृढ़ है कि मैं देह हूं, वह पुरुष देह के निमित्त सब चेष्टा करता है और इसी कारण बहुत काल पर्यंत कष्ट पाता है। जैसे बालक वैताल की कल्पना से भय पाता है, तैसे ही देह में अभिमान से जीव कष्ट पाता है। जिसकी भावना देह से निवृत्त होकर शुद्ध चेतन भाव में प्राप्त होती है, उसको देहादिक जगत भ्रम शांत हो जाता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा तब मैंने फिर प्रश्न किया कि हे भगवन, आपने कहा कि शाप में मंत्रादिकों का बल होता है, वह शाप भी अचल रूप है, मिटता नहीं है। मैंने ऐसा भी देखा है कि शाप से मन, बुद्धि और इंद्रिया भी जड़ भी हो जाती है, पर ऐसा तो नहीं है कि देह को शाप हो और मन को न हो। हे भगवान, मन और देह तो अनन्य रूप है। जैसे वायु और स्पंद में, घृत और चिकनाई में भेद नहीं होता, तैसे ही मन और जगत में भेद नहीं है। यदि कहिए कि देह कुछ वस्तु नहीं, चैतन्य ही चित्त है और देह भी चित्त में कल्पित है, जैसे स्वप्न देह, मृग तृष्णा का जल और दूसरा चंद्रमा भासता है, सो एक के नष्ट हुए दोनों क्यों नहीं नष्ट होते? तैसे ही देह के शाप से चाहिए कि मन को भी शाप लग जावे, तो मैंने देखा है कि शाप से भी जड़ीभूत हो गए हैं, और आप कहते हैं कि देह का कर्म मन को नहीं लगता, यह कैसे जानिए? ब्रह्मा बोले, हे मुनीश्वर, ऐसा पदार्थ जगत में कोई नहीं जो सब कर्मों को त्याग कर पुण्य रूप पुरुषार्थ करने से सिद्ध न हो। पुरुषार्थ करने से सब कुछ होता है। ब्रह्मा से चींटी पर्यंत जिस जिस की भावना होती है तैसा ही रूप हो भासता है। सब जगत के दो शरीर हैं, एक मन रूपी जो चंचल रूप है और दूसरा आधि भौतिक मांसमय शरीर है, उसका किया कार्य निष्फल होता है और मन से जो चेष्टा होती है वह सफल होती है। हे मुनीश्वर, जिस पुरुष को मांसमय शरीर में अहम भाव है उसको आधि व्याधि और शाप भी अवश्य लगता है, और मांसमय शरीर जो गूंगे दिन और क्षण नाश है उनके साथ जिसका संयोग है वह दिन रहता है। चित्तरूपी शरीर चंचल है, वह किसी के वश नहीं होता, अर्थात उसका वश करना महाकठिन है। जब दृढ़ वैराग्य और अभ्यास हो तब वह वश हो, अन्यथा नहीं होता। मन महाचंचल है और यह जगत मन में है, जैसा जैसा मन में निश्चय है सो दूर नहीं होता। मांसमय शरीर का किया कुछ सफल नहीं होता और जो मन का निश्चय है सो दूर नहीं होता। हे मुनीश्वर, जिन पुरुषों ने चित्त को आत्मपद में स्थित किया है उनको अग्नि में डालिए तो भी दुख कुछ नहीं होता और जल में भी उनको दुख नहीं होता, क्योंकि उनका चित्त शरीर आदि भाव ग्रहण नहीं करता, केवल आत्मा में स्थित होता है। हे मुनीश्वर, सब भावों को त्याग कर मन का निश्चय जिसमें दृढ़ होता है वही भासता है। जहां मन दृढ़ीभूत होकर चलता है उसको वही भासता है और किसी संसार के कष्ट और शाप से चलायमान नहीं होता। जो किसी दुख शाप से मन विपर्य भाव में प्राप्त हो जावे तो जानिए कि यह दृढ़ लगा न था, अभ्यास की शिथिलता थी। हे मुनीश्वर, मन की तीव्रता के हिलाने में किसी पदार्थ की शक्ति नहीं, क्योंकि सृष्टि मानसी है। इससे मन में मन को समाए चित्त को परमपद में लगाओ। जब चित्त आत्मा में दृढ़ होता है तब जगत के पदार्थों से चलायमान नहीं होता। मांडव्य ऋषिश्वर को, जिसका चित्त आत्मा में लगा हुआ था, शूली पर भी खेद न हुआ। हे मुनीश्वर, जिसमें मन दृढ़ होकर लगता है उसको कोई चला नहीं सकता। जैसे इंद्र ब्राह्मण चलायमान न हुआ तैसे ही आत्मा में स्थिर हुआ मन चलायमान नहीं होता। हे मुनीश्वर, जैसा जैसा मन में तीव्र भाव होता है उसी की सिद्धता होती है। दीर्घ तपा एक ऋषि था, वह किसी प्रकार अंधे कूप में गिर पड़ा और उस कूप में मन को दृढ़ कर यज्ञ करने लगा। उस यज्ञ से मन में देवता होकर इंद्रपुरी में फल भोगने लगा। और जैसे इंदु ब्राह्मण के पुत्र मनुष्यों के समान थे और उनके मन में जो ब्रह्मा की भावना थी उससे वे दशो ब्रह्मा हुए और दशों ने अपनी अपनी सृष्टि रची और वह सृष्टि मुझसे भी नहीं खंडित होती। इससे जो कुछ दृढ़ अभ्यास होता है वह नष्ट नहीं होता। देवता और महर्षि आदि जो धैर्यवान हुए हैं और जिनकी एक क्षण मात्र भी वृत्ति चलायमान नहीं होती थी, उनको संसार की आधि व्याधि ताप शाप मंत्र और पाप कर्म से लेकर संसार के जो क्षोभ और दुख है नहीं स्पर्श करते थे। जैसे कमल फूल का प्रहार शिला नहीं फोड़ सकता, तैसे ही धैर्यवान को संसार का ताप नहीं खंडन कर सकता। जिसको आधी व्याधि दुख देते हैं उन्हें जानिए कि वह परमार्थ दर्शन से शून्य हो। हे मुनीश्वर, जो पुरुष स्वरूप में सावधान हुए हैं उनको कोई दुख स्पर्श नहीं करता और स्वप्न में भी उनको दुख का अनुभव नहीं होता, क्योंकि उनका चित्त सावधान है। इससे तुम भी दृढ़ पुरुषार्थ करके मन से मन को मारो तो जगत भ्रम नष्ट हो जाएगा। हे मुनीश्वर, जिसको स्वरूप का प्रमाद होता है उसको क्षण में जगत भ्रम दृढ़ हो जाता है। जैसे बालक को क्षण में वैताल भास आता है तैसे ही प्रमाद से जगत भासता है। हे मुनीश्वर, मन रूपी कुलाल है और वृत्ति रूपी मृत्तिका है। उस मन से वृत्ति क्षण में अनेक आकार धरती है। जैसे मृत्तिका कुलाल द्वारा घटाधिक अनेक आकार को धरती है तैसे ही निश्चय के अनुसार वृत्ति अनेक आकारों को पाती है। जैसे सूर्य में उल्लू आदि अपनी भावना से अंधकार देखते हैं कि कितनों को चंद्रमा की किरणें भी भावना से अग्नि रूप भासती है और कितने को विष में अमृत की भावना होती है तो उनको विष भी अमृत रूप हो भासता है। इसी प्रकार कटु अम्ल और लवण भी भावना के अनुसार भासते हैं। जैसे मन में निश्चय होता है तैसे ही भासता है। मन रूपी बाजीगर जैसी रचना चाहता है तैसे ही रच लेता है। और मन का रचा जगत सत्य नहीं और असत्य भी नहीं। प्रत्यक्ष देखने से सत्य है असत्य नहीं, और नष्ट भाव से असत्य है सत्य नहीं, और सत्य असत्य भी मन से भासता है वास्तव में कुछ नहीं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार ब्रह्मा जी ने जो मुझे उपदेश मुझसे कहा था वह मैंने अब तुमसे कहा है। प्रथम ब्रह्मा जो अहम शब्द पर पद में स्थित था उसमें चित्त हुआ, अर्थात अहम अस्मि चेतना का लक्षण हुआ, और उसकी जब दृढ़ता हुई तब मन हुआ। उस मन ने पंच तन्मात्रा की कल्पना की, वह तेजाकार ब्रह्म परमेष्ठी कहता है। हे रामचंद्र जी, वह ब्रह्मा जी मन रूप है और मन ही ब्रह्मा रूप है। उसका रूप संकल्प है, जैसा संकल्प करता है तैसा ही होता है। उस ब्रह्मा ने एक अविद्या शक्ति कल्पी है। अनात्मा में आत्म अभिमान करने का नाम अविद्या है। फिर अविद्या की निवृत्ति विद्या कल्पी। इसी प्रकार पहाड़ तृण जल समुद्र स्थावर जंगम संपूर्ण जगत को उत्पन्न किया। इस प्रकार ब्रह्मा हुआ और इस प्रकार जगत हुआ। तुमने जो कहा कि जगत कैसे उपजता है और कैसे मिटता है सो सुनो। जैसे समुद्र में तरंग उपजते हैं और समुद्र ही में लीन होते हैं तैसे ही संपूर्ण जगत ब्रह्मा में उपजता है और ब्रह्मा में ही लीन होता है। हे रामचंद्र जी, आत्मसत्ता में जो अहम का उल्लेख हुआ है सो मन है और वही ब्रह्मा है। उसी ने नाना प्रकार का जो जगत रचा है वही सर्वचित्त शक्ति फैली है और चित्त के फूरने से ही नानात्व भासता है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ जीव है उन सब में आत्मसत्ता स्थित है परंतु अपने स्वरूप के प्रमाद से भटकते हैं। जैसे वायु से वन के कुंजों में सूखे पात भटकते हैं तैसे ही कर्म रूपी वायु से जीव भटकते हैं और अधः और ऊर्ध्व में घटी यंत्र किनाई अनेक जन्म धरते हैं। जब काकतालीवत सत्संग प्राप्ति हो और अपना पुरुषार्थ करे तब मुक्ति हो। इसकी जब तक प्राप्ति नहीं होती तब तक कर्म रूपी रस्सी से बंधे हुए अनेक जन्म भटकते हैं, और जब ज्ञान की प्राप्ति होगी तभी दृश्य भ्रम से छूटेंगे, अन्यथा न छूटेंगे। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार ब्रह्मा से जीव उपजते और मिटते हैं। अनंत संकटों का कारण वासना ही है, जो नाना प्रकार के भ्रम दिखाती है और जगत रूपी मन की जन्म रूपी वैताल बेल वासना जल से बढ़ती है। जब सम्यक ज्ञान प्राप्त हो तब उसी कुठार से काटो। जब मन में वासना का क्षोभ मिटे तब शरीर रूपी अंकुर मन रूपी बीज से न उपजे। जैसे भुने बीज में अंकुर नहीं उपजता, तैसे ही वासना से रहित मन शरीर को नहीं धारण करता। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जितनी भूत जाति है वह ब्रह्मा से उपजी है। जैसे समुद्र में जो तरंग और बुदबुदे, कोई बड़े कोई छोटे और कोई मध्यम भाव के होते हैं, वे सब जल हैं, वैसे यह जीव ब्रह्म से उपजे है और ब्रह्मरूप है। जैसे सूर्य की किरणों में जल भासता है, अग्नि से चिंगारे उपजते हैं, तैसे ही ब्रह्म से जीव उपजते हैं। जैसे कल्प वृक्ष की मंजरी नाना रूप धारती है, तैसे ही ब्रह्म से जीव हुए हैं। जैसे चंद्रमा से किरणों का विस्तार होता है और वृक्ष से पत्र फल फूल आदि होते हैं, तैसे ही ब्रह्म से जीव होते हैं। जैसे सुवर्ण से अनेक भूषण होते हैं, तैसे ही ब्रह्म से जगत होते हैं। जैसे झरनों से जल के कण उपजते हैं, तैसे ही परमात्मा से भूत उपजते हैं। जैसे आकाश एक ही है पर उससे घट मठ की उपाधि से घटाकाश और मठाकाश कहता है, तैसे ही संवेदन के फुरने से जीव कल्पना होती है। जैसे जल ही द्रवता से तरंग और आवृत रूप भासता है, तैसे ही ब्रह्म ही संवेदन से जगत रूप होकर भासता है। दृष्टा दर्शन और दृश्य सब ब्रह्म से ही उपजे हैं। जैसे सूर्य के तेज से मृग तृष्णा की नदी भासती है, तैसे संवेदन से ब्रह्म में दृष्टा दर्शन दृश्य की त्रिपुटी भासती है। परंतु वास्तव में दृष्टा दर्शन और दृश्य कोई कल्पना नहीं। जैसे चंद्रमा और शीतलता में, सूर्य और प्रकाश में कुछ भेद नहीं, तैसे ही ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं। जैसे समुद्र में तरंग उपजते हैं और समुद्र ही में लीन होते हैं, तैसे ही जीव ब्रह्म से ही उपजते हैं और ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं। कोई सहस्त्र जन्मों के अनंतर प्राप्त होते हैं, कोई थोड़े ही जन्मों में प्राप्त होते हैं। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार जगत परमात्मा से हुआ है और उस ही की इच्छा अनुसार सब व्यवहार करते हैं, वही व्यवहार किनाई हो भासते हैं। हरि सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।